लविंग केयरिंग एंड शेयरिंग पर्सनैलिटी, वो लेक्चर अभी आपके सामने रखा जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है मेरी पर्सनैलिटी में निखार आए और मेरा जीवन महान बने। तो अब इस लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हुए, वी लव, वी केयर, वी शेयर, सभी मेरे साथ बोलेंगे, वी लव, वी केयर, वी शेयर। सबसे पहले केयरिंग पर्सनैलिटी। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे जस्ट वांट टू नो हाउ मच यू केयर। आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या जानते हैं, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। लोग मतलब रखते हैं कि आप उनका कितना ध्यान रखते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को केयरिंग बनाने से पहले ये जानना होगा कि केयरिंग है क्या। केयरिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स वेलबींग। जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ सोचते हैं, उनकी संभाल के लिए हम ख्याल करते हैं, उसे केयरिंग कहते हैं। केयरिंग को यहां दो हिस्सों में बांटा गया है। पहली केयरिंग अपनी केयरिंग, क्योंकि दूसरों की केयरिंग भी वही कर सकता है जो अपनी केयरिंग करना जानता हो। दूसरी है दूसरों की केयरिंग। अपनी केयरिंग को भी चार हिस्सों में आगे बांटा गया है, फिजिकल केयर, कैरेक्टर केयर, वैल्यूज केयर, बिहेवियर केयर। सिमिलरली केयरिंग फॉर अदर्स, फैमिली केयर, कम्युनिटी केयर, सोशल केयर। अगर ये केयरिंग इज ए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें अगर सम्मिलित होंगी तब पर्सनैलिटी केयरिंग बनेगी। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है वो है हेल्थ केयर, फिजिकल केयर। हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। अगर स्वस्थ हमारे हम हैं तो सारे काम हम कर सकते हैं। किसी डॉक्टर ने बहुत सुंदर कहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ वी स्पेंड अवर हेल्थ टू अर्न द वेल्थ एंड सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ वी स्पेंड अवर वेल्थ टू अर्न द हेल्थ। तो क्यों ना हम हेल्थ को जब से होश संभाली है तभी से ही उसके नियमों को पालन करना स्टार्ट कर दे। अगर स्वास्थ्य दवाइयों से मिलता होता तो हर डॉक्टर हर केमिस्ट स्वस्थ होता। अगर हेल्थ पैसे से मिलती होती, दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं वो हेल्दी होते। हेल्थ मिलती है हेल्थ के संबंधित नियमों का पालन करने से। यहाँ पहला नियम बताया है हमारा डाइट से संबंधित, हमारा भोजन कैसे हो। लेट डाइट बिकम अवर मेडिसिन। डाइट ही एक दवाई का काम कर सकती है। आज हमारे भोजन में जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं वो है कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, जिनमें कोई ज्यादा ताकत नहीं होती, ज्यादा पौष्टिक तत्व नहीं होते। उनमें होता है कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, शुगर, जो मोटापा बढ़ाता है, जो अनेक बीमारियों को पैदा करता है। आप सब ये सुनकर हैरान होंगे, चार दिन पहले एक न्यूज आई कि ब्रिटेन में गवर्नमेंट फैट टैक्स लगाने वाली है इन फास्ट फूड और जंक फूड्स के ऊपर। फैट टैक्स, मोटापा टैक्स, और वो टैक्स उतना होगा जितना शराब के ऊपर टैक्स है, उतना ही टैक्स इन चीजों के ऊपर भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इनकी सेल कम से कम हो। प्रति वर्ष ब्रिटेन में 3000 लोग इन फास्ट फूड्स की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं उससे मर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक रूप आज इन्होंने हमें बना रखा है। लिखा है फास्ट फूड किल्स, सचमुच ही ये मृत्यु को आमंत्रित करता है। अगर हम अपने भोजन में कुछ चीजों को बढ़ावा दें, जैसे लिखा है अंकुरित अनाज, अंकुरित करके अनाज के पौष्टिक तत्व बढ़ जाते हैं। अंकुरित गेहूं, अंकुरित सोयाबीन, चना, मूंग, उसको खाने से हमें बहुत कम कीमत पर हेल्थ मिलती है। 34 हेल्दी सब्सटेंसेस उसमें हैं। दूसरा, फलों का जितना हो सके सेवन हम करें, ज्यादा से ज्यादा फल खाएं, क्योंकि फलों में 50 से भी ज्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और फलों को पचने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगती। और फलों को जब भी खाएं एक बात ध्यान में रख के खाएं, खाली पेट खाएं। हम क्या गलती करते हैं, फल लेते तो हैं लेकिन जब भोजन करते हैं उसी वक्त फल लेते हैं। उससे क्या होता है, उसकी जो ताकत है, पौष्टिक तत्व है, उनका हम उतना फायदा नहीं उठा पाते जितना कि खाली पेट उनका फायदा हमें मिल सकता है। तो फ्रूट्स भोजन से एक घंटा पूर्व या भोजन के तीन घंटे पश्चात ही लें। वेजिटेबल्स के बारे में ध्यान रखें, मौसमी सब्जियां, अलग अलग रंग की सब्जियां खाने से हमें ज्यादा फायदा मिलता है, उनमें फाइबर ज्यादा होता है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, हमारे बॉडी में 65% वाटर है। आप पानी के संबंध में एक नियम का पालन करें, एक घंटे में एक गिलास पानी पीना ही है। दिन भर 15 गिलास पानी पीने हैं और गर्मियों में 5 गिलास एक्स्ट्रा पीने हैं, और भोजन करते वक्त भी पानी नहीं पीना है। भोजन से आधा घंटा पूर्व या एक घंटा पश्चात ही पानी लें, वो हमें ज्यादा फायदा देगा। और साथ में साबुत अनाज, वो भी हमें ज्यादा फाइबर देता है, ज्यादा फायदा उठा मिलता है, जैसे कि आपका दलिया। एक्सरसाइज की भी इम्पोर्टेंस है, पैदल चलना, साइकिल चलाना और दूसरी एक्सरसाइजेज हमें बेनिफिट देती हैं। थर्ड इज साउंड स्लीप, हमारी नींद भी प्रॉपर हो, नींद ऐसी हो कि साउंड स्लीप, ऐसा ना हो स्लीप विद साउंड। कई लोग सोते हैं तो सोते सोते साउंड भी करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, वो हेल्थ के लिए ठीक बात नहीं है। अब चलते हैं करेक्टर केयर, हम आगे बढ़ते जाएंगे, पहले स्थूल चीजों को लेंगे फिर बारीक महीन चीजों की ओर बढ़ेंगे। करेक्टर क्या है, व्हाट इज करेक्टर? इट इज करेक्टर के बारे में कहा है, वेल्थ गई कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। करेक्टर इज एग्रीगेट ऑफ व्हाट वी थिंक, व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी डू, हम क्या बोलते हैं, क्या देख सुनते हैं, सोचते हैं और क्या करते हैं, उसी का नाम ही तो करैक्टर है। और देर इज डिफरेंस बिटवीन करैक्टर एंड रेपुटेशन। रेपुटेशन है हम दूसरों की नजर में कैसे हैं, लेकिन करैक्टर का मतलब हम अपनी नजरों में कैसे हैं। हम जब अकेले हैं उस वक्त हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं जब कोई हमें नहीं देख रहा, दैट इज द बेसिस ऑफ अवर करैक्टर। करैक्टर के बारे में बहुत सुंदर बात भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, अनेकों बार वो ब्रह्मा कुमारीज के इस कैंपस में या माउंट आबू आए हैं, एक बार वो आए हुए थे, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही जो यहाँ कोट आपके सामने हम कर रहे हैं। राइटियसनेस इज द बेसिस ऑफ अवर करेक्टर, वेयर देर इज राइटियसनेस इन द हार्ट देर इज ब्यूटी इन द करेक्टर, वेयर देर इज ब्यूटी इन द करेक्टर देर इज हार्मनी इन द होम, वेयर देर इज हार्मनी इन द होम there is order in the nation, where there is order in the nation there is peace in the world. So friends, there is a beautiful connectivity between your character, heart, home, nation and the world. Now the question is how to inject righteousness in the heart, kaise righteousness hamare dilon mein aaye. Brahma Kumaris is the right place to inject the righteousness in the heart. और आप सही स्थान पर सही वक्त पर यहां आए हैं जहां से हमें चीज अपने साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट केयर इज केयर ऑफ योर थॉट्स, आपके विचार, विचारों से जिंदगी बनती है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपके साथ जो कुछ हो रहा है आपके विचारों के कारण हो रहा है, अगर आप जो सोचते हैं उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो चीजें आपकी ओर अपने आप आती हैं। आप अच्छा सोचोगे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होने लग जाएगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। व्हेन यू बिल्ड अ करैक्टर एवरी थॉट काउंट, फिर ये नहीं कि आप सोचते गए और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कितना सोच गए। करैक्टर अगर बनाना चाहते हैं, एक एक विचार महत्वपूर्ण है। Nothing is impossible with positive thinking. क्या आप इस बात को एग्री करते हैं, मानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग जहां है कुछ भी असंभव नहीं है? जो मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। जहां पॉजिटिव थिंकिंग है वहां कुछ भी असंभव नहीं है। लेट अस शेयर ए वन स्टोरी विद यू। एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी, संसार के सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे रिच व्यक्ति जो किसी वक्त थे, बिल गेट्स के साथ की और अपने बेटे को वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया कैसे? पिताजी अपने बेटे के पास जाते हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है और मैंने तुम्हारे लिए सुंदर सी लड़की देख ली है। पिताजी कहते हैं, बच्चा कहता है कि पापा मैं तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। तो पिताजी कहते हैं, अगर वो लड़की जो मैंने देखी है वो बिल गेट की बेटी हो तो? तो बेटा कहता देन ओके नो प्रॉब्लम। अब वो बिल गेट के पास जाते हैं पिताजी और बिल गेट को कहते हैं कि मैंने तुम्हारी लड़की के लिए एक लड़का देख लिया है। बिल गेट कहता है हाथ जोड़ के कि भाई मेरी लड़की अभी कम उम्र की है, उसकी तो शादी की उम्र ही नहीं हुई, तो उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? तो पिताजी बिल गेट को कहते हैं, अगर वो लड़का वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट हो तो? तो बिल गेट तो पैसे वाला आदमी हो तो पैसे की कैलकुलेशन करता है, तो वो कहता देन ओके। अब पिताजी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने आपके बैंक के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट ढूंढ लिया है। तो प्रेसिडेंट साहब कहते हैं, जी हमारे बैंक में तो जितनी वैकेंसीज थी सारी फिल है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो कोई सीट ही नहीं है। तो पिताजी कहते हैं, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बिल गेट का दामाद हो तो? तो इस तरह से जहां पॉजिटिव थिंकिंग है वहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केयर इज केयर ऑफ योर स्पीच, आपके वचन। किसी के शब्द हमारी जिंदगी में खुशी की बहार ले आते हैं, तो किसी के शब्द खुशहाल बगिया को उजाड़ कर वीरान जंगल बना देते हैं। किसी के बोल दिलों में दरार पैदा कर देते हैं, तो किसी के बोल दिलों को जोड़ भी देते हैं। किसी के बोल से हम दूसरे के उमंग उत्साह को बढ़ा सकते हैं, निराशा से निकाल सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं। तो किसी के बोल दूसरे के दुख दर्द को वृद्धि करने वाले होते हैं। अगर आप सचमुच में महान बनना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने बोल के ऊपर जरूर सुधार करना होगा, क्योंकि महान आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं, गिने चुने होते हैं। और महान लोग बोलने से पहले सोचते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक। समझदार व्यक्ति भी सोचता है, बेसमझ भी सोचता है। समझदार व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, बेसमझदार व्यक्ति बोलने के पश्चात सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया। इसलिए किसी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। हमारी कड़वी जुबान, हमारे कटु वचन दूसरे को कितना दुख देते हैं, कितना परेशान करते हैं। एक बार एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा कड़वी चीज कौन सी है। वैसे लोग कहते हैं पोटासियम साइनाइड सबसे कड़वा है, लेकिन जिसने भी उसको खाया वो उसका टेस्ट नहीं बता पाया, वही मर जाता है। इसलिए उसने रिसर्च करना शुरू किया कि दुनिया की सबसे कड़वी चीज क्या है। तो रिसर्च करते करते काफी टाइम उन्होंने घर से बाहर लगा दिया। बाद में घर आए तो दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला और उसके ऊपर ऐसी डांट लगाई, इतने दिन तक तुम घर से बाहर रहे, तुम्हें ना अपनी फिक्र है, ना अपने बच्चों की फिक्र है, ना अपनी पत्नी की फिक्र है। ऐसी उसकी डांट लगाई कि साइंटिस्ट साहब देखते ही रह गए। उन्होंने सोचा था कि मैं एक बड़ी अच्छी किताब दुनिया को लिख के दूंगा कि कड़वी चीज क्या है, लेकिन उन्होंने अनुभव किया और पता चला कि अब मुझे पता चला कि दुनिया की कड़वी चीज क्या है। जब पत्नी ने डांट लगाई, वो पत्नी के पास जाते हैं, उसको थैंक्स कहते हैं कि अब मेरी थीसिस पूरा हुआ, अब मैं अपनी रिसर्च लिखूंगा, लेकिन लास्ट में ये जरूर लिखूंगा कि संसार में सबसे कड़वी चीज अगर है तो वो हमारे कड़वे बोल हैं, हमारे कटु वचन हैं, जो सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाते हैं। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। तलवार के घाव ठीक हो सकते हैं, जुबान के घाव कभी ठीक नहीं होते। ये जुबान ही है जो हमें तख्त पर भी बैठाती है, कुर्सी पर भी बैठाती है, और यही जुबान है जो हमें तख्ते पर भी, फांसी पर भी लटका सकती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। संसार के जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, बहुत से युद्धों का कारण हमारे कटु वचन, गलत शब्दों का इस्तेमाल रहा है। महाभारत आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा। क्यों महाभारत हुआ? कौन से वो शब्द थे द्रौपदी के जिनके कारण महाभारत के युद्ध का जन्म हुआ? अंधे की औलाद अंधा, अंधे की औलाद अंधे ने महाभारत जन्म दे दिया। इसलिए कौन सी बात हमें कहां कहनी है, किन लोगों के सामने कहनी है, कैसे कहनी है, इस बात का जरूर हम ध्यान रखें। एक बार मान लो हम सब जानते हैं राम नाम सत्य है, अच्छी बात है, भगवान का नाम तो सत्य है, लेकिन कहां कहा जाता है कहां कहा जाता है? जब व्यक्ति की अर्थी निकल रही होती है तब कहा जाता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी की मैरिज में चला जाए, वो व्यक्ति घोड़ी पे बैठा हो, डोली सज रही हो और वो कहे राम नाम सत्य है, तो क्या अंदाजा होगा वो हम सब देख सकते। इसलिए हमारे बोल ऐसे हो जो जख्मी दिल पर मरहम पट्टी का काम करें, दर्दे दिल पे दवा का काम करें, सके मांदे व्यक्ति में उमंग उत्साह भरने वाले हों, ये शब्द मुर्दा दिल व्यक्ति में जान फूंक देने वाले हों, ये बोल ही है जो जिंदा भी जलाते हैं और जिंदगी भी दिलाते हैं। एक बड़ी सुंदर कहावत किसी ने कहा, बोल और बोल में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। कोई व्यक्ति की बात को लोग थॉट फॉर टुडे, फेमस सेइंग्स, मॉरल डिक्टा, प्रोवर्ब्स के नाम से जानते हैं, नीति वचन, दोहे, श्लोक उनको कहा जाता है, महामंत्र कहा जाता है। और एक व्यक्ति बात करता है तो लोग कहते हैं भाई साहब बात कुछ बनी नहीं, या ये भी कोई बात हुई। एक व्यक्ति बात करता है कि आपने तो जो बात की बिल्कुल 1,25,000 की बात कही, कमाल की बात आपने कही, 16 आने सही बात आपने कही। और एक व्यक्ति बात करता है लोग कहते बात बनी नहीं। तो दोनों में फर्क है। ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छा एक स्लोगन दिया जाता है, स्पीक लेस स्पीक स्वीटली स्पीक सॉफ्टली, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। इसको अगर जीवन में अपना ले, साथ में युक्ति युक्त बोलो, युक्ति से भी काम लेना पड़ता है। एक बार एक हाथी जो राजा का था बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया और बीमार हो गया। राजा ने सारे गांव वालों को बुलाया कि देखो इस हाथी को मैंने बड़े प्यार से पाला है, अब मैं ये हाथी आपको दे रहा हूं, आप इसको अच्छी तरह से इसकी पालना करना और ये जब बीमार पड़ जाए मुझे इसकी खबर वगैरह देते रहना। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये खबर लेके नहीं आए कि हाथी चल बसा, हाथी मर गया। अब गांव वाले राजा का हुक्म समझकर ले गए हाथी को, बड़ी केयर की, राजा का हाथी, खबर भी देते रहे बीच बीच में। लेकिन आप सब जानते हैं एक दिन हमें भी जाना है तो हाथी ने तो जाना ही था, तो हाथी चल बसा। गांव वालों को टेंशन हो गई, राजा को कौन जाके बताए। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, लोग उसके पास गए। उसने कहा डोंट वरी, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं बात कर लूंगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ गांव वाले सारे वहां चले गए और राजा को कहा कि जहां पना आपने जो हाथी हमें दिया था, 2 दिन से ना घास खा रहा है ना पानी पी रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है, ना सांस ले रहा है। राजा हैरान, वो कहता क्या वो मर गया? वो कहते महाराज हम अपने मुख से कैसे कहें। तो ये है हमारे युक्ति युक्त शब्द। तीसरी केयर है केयर ऑफ आवर एक्शंस, हमारे कर्म। हम कर्म से पहचाने जाते हैं। हम इस संसार से जाएं तो हम एक छाप छोड़कर जाएं। When we leave this world, we leave a legacy behind. उसके लिए कहा है a right is right even no one does it and a wrong is wrong even if everyone does it. गलत गलत ही है चाहे सारी दुनिया उसे कर रही हो। हम क्या आर्गूमेंट देते हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, सब बेईमान हैं, सब झूठ बोलते हैं, हम भी बोल लें। लेकिन ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि दो झूठ भी एक सच को दबा नहीं सकते। गलत गलती रहेगा, सही सही रहेगा। और कोई भी काम ना तो छोटा है ना बड़ा है, ये काम करने वाले के ऊपर निर्भर है कि उस काम को किस अंदाज से करता है। सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। कोई वो अलग काम नहीं करते, काम वही होता है, लेकिन काम को इतनी परफेक्शन के साथ करते हैं कि वो कामयाब हो जाते हैं। कर्म का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, कर्मा इज इट सेल्फ रिवार्ड। कर्म अपने आप में ही इनाम है। हम क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं और तुरंत उसके फल की इच्छा रखते हैं कि मैंने उस व्यक्ति के साथ भला किया, उसे भी मेरे साथ भला करना चाहिए था, मैंने उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया और वो आज मेरे से दुश्मनी मोल ले रहा है, उस व्यक्ति को मैंने बिजनेस में मदद की आज उसका बिजनेस अच्छा हो गया तो मुझे पीछे कर रहा है। हम उस वक्त ये भूल जाते हैं कि कर्म अपने आप में ही इनाम है, दूसरे ने गलत काम किया उसका भी फल उसे मिलेगा, आपने किसी का भला किया उसका भी आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना है। किसी कर्म का फल तुरंत मिलता है और किसी कर्म का फल थोड़ी देर बाद मिलता है। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, क्या हमें हमारी अंतरात्मा हमारा जमीर नहीं कहता कि तुमने कोई अच्छा काम किया है? क्या हमें अंदर से संतुष्टि नहीं होती कि तुमने कोई अच्छा काम किया है? मान लो कोई व्यक्ति प्यासा है, प्यासे व्यक्ति को हमने पानी पिला दिया, तो वो व्यक्ति हमें थैंक्स करे या ना करे, हमारी तारीफ करे या ना करे, लेकिन क्या हमारे अंदर से ये नहीं आता कि मैंने अच्छा काम किया है, मैंने एक प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझाई है, मेरा पानी सफल हुआ, उसका जीवन सफल हुआ, तो क्या ये रिवार्ड नहीं है जो हमें शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है? इसलिए कर्म का फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल आज नहीं तो निश्चित कल, बुरे कर्म का बुरा फल आज नहीं तो निश्चित कल, ये बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए। वैल्यूज केयर। अब आते हैं मूल्यों के ऊपर। हजारों सालों से है आदमी का वजूद, फिर भी निगाहें तरसती हैं आदमी के लिए। आज हम देवता तो दूर की बात, आदमी नहीं बन पा रहे। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस इन टूडेज वर्ल्ड इज क्राइसिस ऑफ वैल्यूज एंड करेक्टर। आज संसार में सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट, जितने भी प्रॉब्लम्स और रेट हैं, या लोगों के बीच में जो गैप पड़ता जा रहा है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उन सब का कारण वैल्यूज की कमी है। वैल्यूज की कमी के कारण ही आज इंसान पत्थर दिल बन गया है। लोग कहते हैं मैन हैज बिकम वर्स देन बीस्ट, ही हैज बिकम स्टोन हार्टेड, हिज लेवल हैज कम डाउन टू दैट ऑफ एनिमल्स। हम आज पशुओं से भी नीचे गिर गए हैं। क्यों? ड्यू टू अबसेंस ऑफ वैल्यूज। सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, शांति, इन चीजों को हम छोड़कर समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। यहां बताया नेशन विदाउट विजन एंड मिशन, इंडिविजुअल विदाउट वैल्यूज एंड करेक्टर आर बर्डन टू सोसाइटी। जिन लोगों में मूल्य नहीं है वही तो राक्षस हैं। राक्षस कोई अलग चीज नहीं है, देवता भी कोई अलग नहीं है। जिनमें मूल्य है, दिव्य गुण है, वो देवता है, जिनमें नहीं है वो उससे उल्टे हैं। तो आज ये दिव्य गुण हमें अपने जीवन में लाने हैं और वैल्यूज के आगे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है, कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। जितने भी लोग महान बने हैं मूल्यों की वजह से बने हैं। आप सब ने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही है, उसकी जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आप में से कितने हैं जिन्होंने उनकी ये बुक पढ़ी है? बहुत कम लोग। उनकी बुक जरूर पढ़ना, उसमें एक एक बात इतनी मूल्यों से भरी पड़ी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं पढ़ रहा था, एक छोटी सी स्टोरी उनके जीवन की मैं शेयर करना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने साबरमती में अहमदाबाद में अपना आश्रम बनाया था, नया नया आश्रम अभी सेटअप किया था, कि उनके एक बहुत क्लोज दोस्त का लेटर बॉम्बे से आता है कि आपके आश्रम में एक अनटचेबल फैमिली रहना चाहती है। उसमें एक हस्बैंड है, वाइफ है, वेरी हम्बल, वेरी ऑनेस्ट, और एक उनकी बेटी है। महात्मा गांधी ने कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेगा वो रह सकता है। हालांकि उस वक्त जाति प्रथा इतनी स्ट्रांग थी कि बात मत पूछो, लेकिन महात्मा गांधी ने उसको दरकिनार करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा रहेगा। लेकिन जैसे ही उनको वहां रहना अलाउ किया, तो जो आश्रम जिन्होंने बिल्डिंग किराए पे दी थी, जो फाइनेंशियल मदद करते थे, सब ने गांधी जी को धमकाना स्टार्ट कर दिया। मालिक ने कहा इस कुएं का पानी या तो हम इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, ये कुएं को हाथ नहीं लगा सकते। जो पैसे देते थे उन्होंने कहा इनको बाहर करो, अगर नहीं करते हमारे पास आपको देने के लिए कोई भी फंड्स नहीं है, अपना इंतजाम आपे करो। गांधी जी ने सोचा अच्छी परीक्षा आ गई, लेकिन मूल्यों के ऊपर इतने दृढ़, इतने स्ट्रांग, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हमें अनटचेबल क्वार्टर्स में जाकर रहना पड़े, लेबर करनी पड़े, लेकिन हम अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे, नो कंप्रोमाइज, झुके नहीं कुछ भी हो जाए। और उन्होंने अपना अनुभव लिखा, वो समस्या जो आई थी थोड़े दिनों के बाद चली गई। गॉड हेल्प्स एट द लास्ट मोमेंट, भगवान पहले टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है, लेकिन अंत घड़ी में आपका साथ देगा। कैसे? एक सेठ अचानक आश्रम के दरवाजे के बाहर गाड़ी में आया और उसने कहा, मैं आपके आश्रम की मदद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, कीजिए। अगले दिन वो व्यक्ति द्वारा आया और 13,000 रुपए का चेक 1920 में महात्मा गांधी को थमाकर चला गया। नो जान पहचान, कभी देखा भी नहीं था, और पैसे देने के बाद भी उस सेठ कभी नजर नहीं आया। किसने उसको भेजा? और वह इतनी मदद 13,000 की करके गया कि आश्रम का खर्चा एक साल तक बिना किसी की सपोर्ट के चल सकता था। महात्मा गांधी ने कहा, मेरा एक छोटा सा प्रयास से अनटचेबिलिटी की जड़ें हमारे समाज से हिल गई। एक छोटा सा प्रयास, मूल्यों के ऊपर दृढ़ता। यहां दिखाया है पिताश्री ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडिंग फादर, बहुत अमीर हीरे जवाहरात के बिजनेसमैन। जब ये संस्था बनाई, कुछ ही सालों में यहां पर बहुत से लोग रहते थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, लेकिन उन्होंने मूल्यों के आगे कंप्रोमाइज नहीं कहा। उन्होंने कहा, हम मांगेंगे नहीं, मांगने से मरना भला। कुछ भी हो जाए, परमात्मा के ऊपर निश्चय रखा और वो समस्या कुछ ही दिनों के बाद समाप्त हो गई। और जो पैसे की दिक्कत उस वक्त आई थी, 400 लोग घर में थे, सरेंडर्ड थे, दोपहर के खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनका उस आलमाइटी के ऊपर विश्वास, मूल्यों के ऊपर विश्वास कि हमने भगवान का साथ पकड़ा है, भगवान जरूर मदद करेगा, उसका परिणाम आप देख सकते हैं। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था कितनी आगे फैल रही है और फैल चुकी है, चारों तरफ किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो त्याग उस वक्त किया, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। तो ये सिद्धांत हमें अपने जीवन में अपनाने होंगे जैसे उन लोगों ने अपनाए थे। और वैल्यूज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम जानेंगे कि वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट हमें हैं। एक सेठ जिनकी दुकान और मकान जलकर राख हो गया, सहानुभूति जुटाने वालों का तांता लग गया, जो सेठ को जरा भी नहीं अच्छा लग रहा था, उन्होंने जले हुए मकान की राख के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया, दुकान जल गई, मकान जल गया, लेकिन आत्मविश्वास नहीं जला। सहानुभूति जुटाने वाले आते, बोर्ड देखते, बोर्ड को पढ़कर चुपचाप वापस चले जाते। सेठ जी ने दोबारा मेहनत की, हिम्मत से काम लिया और पहले से भी बड़ी दुकान और मकान खड़ा कर दिया। बताओ कौन सी वैल्यूज थी जिससे सेठ जी को सफलता मिली? आत्म विश्वास और हिम्मत। गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपको बापू जी क्यों कहते हैं? एक अंग्रेज ने पूछा कि आपको बापू जी क्यों कहते हैं? हम सब जानते हैं कि उनका स्टेटस हमारे देश में क्या है, ही इज द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता है, इसलिए उनको बापू जी कहा जाता है। लेकिन महात्मा गांधी इतने विनम्र, उन्होंने कहा, वो कह सकते थे कि मैं आई एम सो एंड सो, कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा लीडर हूं, सारा देश मेरे पीछे चलता है, क्या आप मुझे नहीं जानते? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा, क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं ना, तो ये है हमारी हम्बलनेस। जितने हम महान बनते जाएंगे, उतनी हम्बलनेस हम में आती जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट केयर इज बिहेवियर केयर, हमारा व्यवहार कैसा हो। कल भी चर्चा हो रही थी, कई बार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सबसे बड़ा बार कौन सा है? हमारा व्यवहार। व्यवहार कला सबसे बड़ी कला है। आपने अनेक शास्त्र, अनेक ग्रंथ पढ़े होंगे, सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? सबसे बड़ा शास्त्र है व्यवहार शास्त्र। क्योंकि जितने भी शास्त्र दुनिया में हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार कला कैसे आती है, वो बताया है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम उनसे चाहते हैं। किसी के भी बुराई हम ना देखें, किसी के अवगुण ना देखें, दूसरों को क्रिटिसाइज ना करें, सबको सम्मान देते चलें, तो हम व्यवहार कुशल स्वतः बन जाएंगे। सम पीपल हैव प्रॉब्लम्स, सम पीपल आर प्रॉब्लम्स, सम पीपल मेक प्रॉब्लम्स, सम पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स, व्हाट अबाउट यू? ये हमें सोचना है। हमें अपनी पर्सनैलिटी बनानी है सॉल्यूशन पर्सनालिटी, प्रॉब्लम पर्सनालिटी नहीं। प्रॉब्लम में गिनाने वाले बहुत है, प्रॉब्लम में तो बढ़ेंगी, लेकिन अगर उनका समाधान कर सकते हैं तो हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। केयर फॉर अदर्स, अब आती है बात जो समाज सेवा से भी जुड़ी हुई है। अपनी केयर भी कर ली, लेकिन दूसरों की भी तो केयर करनी है। दूसरे भी तो हमारे साथी हैं, हमारे भाई बहने हैं, उसमें है फैमिली केयर, उसमें है कम्युनिटी केयर। फैमिली केयर में भी हमारे पास एक है चाइल्ड केयर, एक है एल्डरली केयर। हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चों की केयर कैसे करें? मां बाप व्यक्ति के प्रथम गुरु होते हैं। मां बाप के संस्कारों का, मां बाप के विचारों का प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तनाव रहता है, तो बच्चे उससे क्या सीखेंगे, बच्चों के ऊपर उसका कितना बुरा असर पड़ेगा। मां बाप का व्यवहार बच्चों को बना रहा होता है। किसी भी बच्चे का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि उन्हीं बच्चों में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, शंकराचार्य जैसे महान व्यक्तित्व छिपे होते हैं। एक बच्चा जन्म लेते ही उसके मां बाप उसकी केयर इतनी करते हैं आजकल, कैसे उसका खान पान हो, कैसे उसका पालन पोषण हो, हर बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन मुख्य बात है उसे हम कैसे संस्कार दे रहे हैं, क्या हम उसे सुसंस्कारित बना रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछे और बच्चों के आगे एक रोल मॉडल, एक उदाहरण बनकर हम जिए। आज बच्चों के आगे कोई रोल मॉडल नहीं रहा जिसे देख के वो अपना जीवन बना सके। माँ बाप का 3/4 प्रभाव बच्चे की पर्सनालिटी में माँ बाप का पड़ता है। माँ बाप, बाप खुद ड्रिंकिंग कर रहा है घर में, स्मोकिंग कर रहा है, गाली गलौज करता है, बच्चे उससे क्या सीखेंगे। बच्चों के सामने हम टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं बच्चे तुम दूसरे कमरे में जाओ, वहां जाकर पढ़ाई करो। तो बच्चा कहेगा हमें कहते हैं पढ़ो, खुद फिल्म देखते हैं। तो बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जितना हमारा डिसिप्लिन, देखो बच्चे भी हंस रहे, जितना हमारा खुद का जीवन डिसिप्लिन्ड होगा, अनुशासित होगा, उतना ही अनुशासन हम दूसरों अपने बच्चों में ला सकते हैं। और अगली बात है हम नेगेटिविटी से अपने बच्चों की जरूर केयर करें। इतनी नेगेटिविटी आज के समाज में है। पहले तो सिनेमा घर से बाहर होता था, आज सिनेमा जिसे सिन की मां कहते हैं, पाप की मां, घर घर में आ चुका है। ना केवल सिनेमा, टीवी, आज तो इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, इतनी चीजें जिनके फायदे तो हैं ही लेकिन नुकसान इतने ज्यादा हैं। अगर उन नुकसानों को हम नहीं बच्चों को समझा पाएंगे, हो सकता है बाल मन भ्रमित हो जाए, बच्चा अपना रास्ता छोड़कर अपनी मंजिल का भूल जाए। इसलिए उन्हें समझाना जरूरी है कि इन चीजों का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इनसे बचकर रहें। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी केयर नहीं करते। इसके लिए कौन जिम्मेवार? माँ बाप खुद जिम्मेवार हैं। अगर माँ बाप ने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते, अच्छे गुणवान चरित्रवान बनाया होता, उनको सिखाया होता कहाँ को चलना है, We taught children how to walk, but didn't teach them where to walk. चलना है, पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या देखना है, कैसे जिंदगी में रहना है, वो अच्छी बातें नहीं सिखाई, तो वो बच्चा आपको फेथफुल नहीं होगा। हम अपने बच्चों की तो केयर करते हैं, समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है। केयरिंग ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, अनाथ बच्चे, बचपन से ही जिनके माँ बाप बिछड़ गए, उनके लिए भी हम सोचे, उनके लिए भी कुछ करें। उनके लिए अगर आपके पास पैसा है, पैसे से मदद कर सकते हैं, कोई हुनर है, हुनर सिखा सकते हैं, कोई आर्ट है, शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, मान लो आपके पास तो पैसा नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा है, टाइम नहीं है, उन लोगों को मोटिवेट करके उनके सहयोग से हम उन बच्चों का भला कर सकते हैं। आजकल बच्चों को लोग गोद भी लेते हैं, अडॉप्ट भी करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, उनको भी एनकरेज कर सकते हैं, ताकि बच्चों को फिर से माँ बाप मिल जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई वैसे ही हो जैसे और बच्चों की होती है। अब बात आती है बची। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप, उनकी भी केयर करना जरूरी है। कलयुग के बारे में कहा गया है, कलयुग में एक कुएं का पानी चार कुओं में समा सकता है, लेकिन चार कुओं का पानी एक कुएं में नहीं आ सकता। माना एक माँ बाप चार बच्चों को पालना कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा सकते हैं। जब वही माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वही बच्चे माँ बाप को डिवाइड कर देते हैं, तीन तीन महीने के लिए उनको डिवाइड कर दिया जाता है। क्या माँ बाप के ऊपर बीती होगी? जिन बच्चों के लिए उन्होंने घर बनाया, अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाई, वही बच्चे उन्हें घर और भोजन से बेघर कर देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रमों में भेज दिया जाता है। और वृद्धाश्रम का जीवन, आप भले ही इसका नाम सुनने को अच्छा लगे, लेकिन वृद्धाश्रम का जीवन किसी सन्नाटे से कम नहीं होता। वहां की सुनसान रातें अपने से बिछुड़ने का दर्द हमें बताती हैं। आज जरूरत है उस दर्द को समझने की। अगर हर बच्चा अपने माँ बाप को मान सम्मान और प्यार का एहसास दिलाए तो वृद्धाश्रम जैसी अवधारणा समाज से खत्म हो जाए, वृद्धाश्रम की जरूरत ही ना रहे। वृद्धाश्रम तब बनते हैं जब बच्चों अपनी माँ बाप की केयर नहीं करते। आज हम अपने माँ बाप को निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको बर्डन समझने लगे हैं, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी बुजुर्ग होना है। जो हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, एक दिन आएगा हमारे बच्चे भी उससे ज्यादा करेंगे। अच्छी केयर करेंगे हमारे बच्चे, हमारी भी अच्छी केयर करेंगे। इसलिए माँ बाप के प्रति हम कुछ टाइम निकालें। ऐसा ना सोचें कि ये तो बुजुर्ग है, इनके तो विचार पुराने हैं, इनसे क्या बात करें, इनको बगीचे में भेज दो। आजकल बगीचों में बुजुर्ग बेचारे घूमते रहते हैं। घर में तभी आते हैं जब या तो खाना खाना हो या घर में कोई ना हो। बच्चों को स्कूल छोड़ना और चौकीदारी करना घर का उनका वही काम रह गया है। तो ऐसे युग में बच्चों माँ बाप की इज्जत कैसे हम करें, कैसे उनको एहसास दिलाए कि आप हमारे लिए कितने जरूरी हैं, उनके मान सम्मान को हम बरकरार रखें। बुजुर्ग लोगों के पास अगर कुछ भी नहीं है तो एक चीज जरूर है, वो चीज है एक्सपीरियंस, अनुभव। हम कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी कुछ हो, लेकिन जो अनुभव है वो टाइम के साथ आता है और वो बुजुर्ग लोगों के पास होता है। उनसे हम सीखें, उनके लिए टाइम निकालें, उनको निग्लेक्ट ना करें। और हम सब आज से ये संकल्प लेंगे कि हम अपने माँ बाप की जरूर सेवा करेंगे, माँ बाप को किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको जितना हो सकता है हमसे उनकी सेवा करके उनकी दुआएं लेंगे। ऐसे कोई शब्द हम नहीं कहेंगे जो उनके दिल को दुख पहुंचे। और अपने माँ बाप के साथ साथ बाहर समाज में भी ऐसे बुजुर्ग हैं, उनकी भी हम मदद करें। कैसे मदद कर सकते हैं? मान लो बुजुर्ग एक बस में जा रहा है, उसको सीट नहीं मिल रही, तो हम उसको अगर सीट दे देते हैं तो उसकी एक मदद होगी। लाइन लगी हुई है बैंक में और हम धक्का मार के, नौजवान है ताकत का दिखा के, बुजुर्ग को पीछे करके आगे हो जाते हैं, तो ये क्या बुजुर्गों की इज्जत करना हुआ? आज सरकार भी बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन कहकर सम्मान देती है, उन्हें पेंशन देती है, और हम उन्हें टेंशन दे रहे हैं। तो हमें अपनी ये अवधारणा बदलकर बुजुर्गों को यथासंभव जितना हो सके मान सम्मान देना है और आगे बढ़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, वी शेयर। शेयरिंग पर्सनैलिटी का नाम लेते ही मेरे मन में दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक तस्वीर है एक बहुत अच्छे पेड़ की जिसमें बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर है नदी की। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस बेड पे आप सोते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, क्या वो अपने लिए बना है या दूसरों के लिए बना है? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नेचर की चीज है, वो सब दातापन से भरी हुई है, उनका देने का भाव है। भगवान को भी दाता कहते हैं, हमारे पूर्वज भी देवता थे, देते थे, हम लेवता बन गए हैं। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है देते चलो, लेकिन उसको भूल हम लेने वाले बन गए हैं, इसलिए आज परेशान हैं। तो शेयरिंग पर्सनालिटी का मतलब जो कुछ हमारे पास है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, हैप्पीनेस है, जॉय है, रिसोर्सेज हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर करें, मिल बांट कर चले। मिल बांट कर जीना, मिल बांट कर खाना बहुत बड़ा दैवी गुण है। शेयरिंग का मतलब है एटीट्यूड ऑफ गिविंग, सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग। प्रकृति हमें दे रही है, शेयरिंग में हम दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए अगर उन्हें कोई सपोर्ट देते हैं, टाइम देते हैं, उनके प्रति निकालते हैं, मनी की सपोर्ट है, टाइम की है, वो सब शेयरिंग कहलाता है। सर्व अदर्स एंड इन द प्रोसेस यू विल सर्व ऑटोमेटिकली। दूसरों की सेवा करो, आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी। कैसे कैसे आपकी सेवा हो जाएगी? कल भी एक कहानी का थोड़ा सा जिक्र हुआ था। एक बार भगवान ने डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की, बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन, 56 प्रकार के पकवान, 108 प्रकार के फल उस पार्टी में रखे हुए थे। देवताओं को भी बुलाया गया तो असुरों को भी बुलाया गया। सबसे पहले असुरों को डाइनिंग हॉल में ले जाया गया और उन्हें कहा कि तुम्हें ये भोजन स्वीकार करना है। भोजन को देखते ही उनके मुख में पानी आ गया, लेकिन एक शर्त लगाई गई, उनके हाथ में 3 फुट लंबा डंडा बांध दिया गया बाजू में, ताकि उनकी बाजू ऐसे ना मुड़े, सीधी रहे। अब जैसे ही उन्होंने भोजन देखा तो वो तो तमो प्रधान वृत्ति वाले एकदम उसके ऊपर टूट पड़े, उठाने लगे, अब हाथ मुड़े ना। तो उसने उठाया, इधर करने की कोशिश की, हुआ नहीं, तो किसी का इधर गिरा, किसी का उधर गिरा, एक दूसरे के सबने कपड़े खराब कर दिए, डाइनिंग हॉल भी खराब कर दिया। वेटर आए, उन्होंने कहा बाहर जाओ, तुम खाना खाने के लायक नहीं हो, उन्हें बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हम खाएं, हम तो खा नहीं सकते थे। अब देवताओं को बुलाया गया, उनके भी बाजू में बांध दिया गया डंडा। तो देवताओं का दिमाग प्योर, सतो प्रधान, उन्होंने सोचा कि अगर हम दूसरे को खिलाएंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेरा हाथ अपनी तरफ तो नहीं मुड़ रहा लेकिन सामने की तरफ तो जा रहा है ना। तो उन्होंने भोजन उठाया, सामने वाले देवता को खिला दिया, सामने वाले देवता ने उसे खिला दिया, इस तरह सबने भोजन किया और सबका पेट भर गया। तो ये है, हम दूसरों को खिलाएंगे हमें स्वतः मिलेगा ही। हलवाई को आप देख लीजिए, हलवाई के पास आप जाइए और उसे कहिए कि मिठाई का डब्बा आप उसको गिफ्ट में ले जाओ, तो हलवाई क्या कहेगा? वो कहेगा मैं पहले तंग हूं, मैं क्यों खाऊं? क्यों? क्योंकि हलवाई दूसरे को खिलाता है, जो दूसरे को खिलाएगा उसका पेट अपने आप भर जाएगा, ये नियम है। इसलिए दूसरों की सेवा करो, आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी। लाइफ इज एन इको, ऑल कम्स बैक, द गुड द बैड द फास्ट द ट्रू। जो कुछ आप देते हो दूसरों को वो आपके पास रिफ्लेक्ट होके आता है, इसलिए आप जो कुछ कर रहे हो बिना रिटर्न की इच्छा से करो, बिना फल की प्राप्ति मान सम्मान की इच्छा से परे होके करो, तो उसका जो रिटर्न आएगा, रिवार्ड मिलेगा, वो 10 गुना ज्यादा होगा। मोटो ऑफ शेयरिंग इज गिव, याद रख के आप यहां से जाएंगे जरूर, ये छोटी सी तो लाइन है, गिव गिव एंड गिव, दिस इज द मोटो ऑफ शेयरिंग। हमें देना है, हम लेने वाले बन गए हैं। दूसरा मुझे प्यार करे, दूसरा मुझे इज्जत करे, सहयोग दे, इसलिए परेशान है। हम दूसरों को प्यार करने लग जाएं, दूसरों को सहयोग देना शुरू कर दें, दूसरों को खुशी देना शुरू कर दें, तो आपको तो नेचुरल रिफ्लेक्ट होके आएगी, क्योंकि जिंदगी एक इको की तरह है। सर्विस मोटो तब आता है जब हम दूसरों की दिक्कतों को, कठिनाइयों को समझ सके और उसके लिए अपने सुख सुविधाओं का भी त्याग कर दें, तो सर्विस मोटो आता है। शेयरिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है, द मोर यू गिव द मोर यू गेट, द मोर यू गिव द मोर यू गेट, मोर ऑफ एवरीथिंग यू शेयर द मोर ऑफ एवरीथिंग यू विल ऑलवेज हैव स्पेयर। शेयर एंड स्पेयर, जितना शेयर करेंगे उतना आपके घर में स्पेयर पड़ा रहेगा, आपके पास बढ़ता रहेगा। हम सब यहां भगवान के घर में अपना यथासंभव सहयोग देते हैं, हम सबका अनुभव है, यू विल स्पेंड गॉड विल सेंड। आप अच्छी तरह अच्छी जगह अपना खर्च स्पेंड करेंगे, भगवान आपको भेजेगा ही। पावर ऑफ शेयरिंग हमें आती है, और एक्चुअल सेटिस्फेक्शन इज इन गिविंग नॉट इन टेकिंग। संतुष्टता देने में है, लेने में नहीं है। देने में खुशी है, देने में बरकत है, लेने में बोझ है। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, बापू जी आपको खुशी कब मिलती है? क्या तब जब आपको कोई खाना खिलाता है? महात्मा गांधी ने कहा तब नहीं मिलती। फिर कहा कब मिलती है? जब मैं दूसरों को खिलाता हूं। जब हम दूसरों को देते हैं तो खुशी है। आजकल लोग मेहमानों को अपने घर बुलाते हैं, और रिवाज है मेहमान जब बैठते हैं उनके आगे ट्रे में ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह रख देते हैं, और जो होस्ट है, गेस्ट है, वो एक आधा उठा के ले लेता है। होस्ट कहता है कि और उठाइए, आपका ही है, और लीजिए। लेकिन जो मेहमान है वो एक आधा और उठा लेता है। उसको कहो मुट्ठी कोई नहीं भरता। क्यों? देने वाला खुशी से दे रहा है, फ्री में मिल रहा है, और खाने की भी अच्छी चीज है। ड्राई फ्रूट तो हर कोई खाता है, तो फिर भी आप क्यों नहीं खा रहे हो? क्यों? क्योंकि लेने में बोझ है। अब वही व्यक्ति उसके दूसरे के घर में चला जाए, जो मेहमान था वो दूसरे के घर में, वो अब होस्ट बन जाए, अब वो भी कहेगा खाइए खाइए। अब जो होस्ट था वो कहेगा मैं नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है लेने में बोझ है, देने में खुशी है। अगर हम देते जाएंगे तो भगवान बरकत दे करेगा, लेकिन देने के लिए विशाल हृदय चाहिए। संकीर्ण हृदय वाला सोचेगा अगर मैं ऐसे लुटाता गया तो मेरे पास क्या बचेगा। विशाल हृदय वाला सोचेगा अगर मैं दूंगा तो भगवान मुझे और देगा, मेरा घर हमेशा भरा रहेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को भी हम दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों की प्रॉब्लम्स भी अपने साथ शेयर करें। जो हमने शेयर कर दिया वही हमारा अपना है, और जो पड़ा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। वो बैंक का बैंक में रह जाएगा, हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। जो दूसरों की भलाई में इस्तेमाल किया फायदा उसका है। हमें शेयर जरूर करना है, शेयरिंग लाइफ। अगर हम पैसा शेयर करेंगे तो आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको दिया, दोनों के पास एक एक रुपया हो गया, लेकिन उससे भी अच्छा है हम आइडियाज नॉलेज शेयर करें। मैंने आपको आइडिया दिया, आपने भी मुझे एक आइडिया दिया, तो कितने आइडिया हो गए हम दोनों के पास? दो दो आइडिया हो गए। आपने हमें खुशी दी, हमने भी खुशी दी, आपकी भी डबल हो गई, हमारी भी डबल हो गई। इसलिए ये शेयरिंग की पावर है। अब तीसरा कंपोनेंट वो है लविंग पर्सनैलिटी। हमारा व्यक्तित्व स्नेह भरा कैसा बने। लाइफ इज ड्राई एंड मीनिंगलेस विदाउट ट्रू लव। हमारा ये जीवन रूखा और सूखा है अगर जीवन में प्यार नहीं है। दुनिया में कोई व्यक्ति भला कितना ही करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन जीवन में परिवार में स्नेह नहीं है तो सब खाली खाली सा लगता है। चारों तरफ आप नजर दौड़ा दीजिए, ये संसार किससे चल रहा है? प्यार से ही तो चल रहा है। जहां प्यार नहीं है वहां तनाव है, जहां प्यार नहीं है वहां टकराव है, वहां स्वार्थ है, वहां संबंधों में बिखराव है। एक बच्चा जन्म लेते ही माँ बाप की पालना में पलने लगता है। आप संसार की उन घटनाओं के ऊपर नजर दौड़ाइए जहाँ किसी कारणवश माँ बच्चा अपने माँ बाप के प्यार से वंचित रह गया हो, तो वहाँ कहीं उस बच्चे का जीवन निराशा से भरा मिलता है, कहीं जीवन में उदासी छा जाती है। तब लोग कहते हैं काश इसे अपने माँ बाप का प्यार मिला होता। इतना बड़ा है माँ और बाप का प्यार। प्यार के अनेक रूप हैं। माँ का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, देश प्रेम, भाषा प्रेम। माँ अपने बच्चे के प्रेम में सारी रात जाग कर काट देती है। उससे पूछो बच्चा बीमार पड़ा है, आप थके तो नहीं? वो कहती मैं नहीं थकी, सब यहाँ माताएं बैठी हैं, सबके अनुभव है। बच्चे के प्रेम में थकती नहीं है। क्यों? सहन शक्ति भी आ जाती है, क्योंकि बच्चे के साथ प्यार है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश प्रेम में कुर्बानियां दे दी, अंग्रेजों की यातनाएं सही, पीठ पर हंटर की मार सही, लेकिन उफ तक नहीं कही। कुछ सब कुछ सहा, फिर भी कहा वंदे मातरम। क्यों? क्योंकि देश प्रेम था। प्रेम जब हम अपने हम उम्र व्यक्तियों के साथ करते हैं उसे दोस्ती कहा जाता है। जब प्यार बड़ों के साथ किया जाता है उसे रिस्पेक्ट कहा जाता है, जब प्यार छोटों के साथ किया जाता है उसे सहन शक्ति या उसे क्षमाशीलता कहा जाता है। जब ये प्यार हमें धन दौलत से संपत्ति से हो जाता है उसे लालच कहा जाता है। जब प्यार हमें अपनी पद पोजीशन डेजिग्नेशन से हो जाता है उसे अभिमान कहा जाता है। जब ये प्यार किसी के शारीरिक सौंदर्य से हो जाता है उसे लस्ट कहा जाता है। जब हम प्यार अपने आप से करने लगते हैं उसे सेल्फ एस्टीम कहते हैं, सम्मान कहते हैं। जब ये प्यार अपने देश से हो जाए उसे राष्ट्रभक्ति कहा जाता है। जब ये प्यार सत्ता से हो जाए उसे विज्ञान कहा जाता है। जब ये प्यार मानवता से हो जाए उसे समाज सेवा कहा जाता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, अगर वो प्यार उस प्यार के सागर परमात्मा से हो जाए तो उसे आध्यात्मिकता कहा जाता है। और हमारे जीवन का बेसिक एम है हैप्पी रहना। हैप्पी रहने का तरीका है प्यार से रहना। प्यार तो पत्थर दिलों को भी पिघला देता है, प्यार तो पत्थर दिलों को भी पिघला देता है। आज से 47 वर्ष पूर्व की सत्य घटना, पंजाब में लुधियाना नाम का शहर, एक नौजवान युवक अपने गांव से लुधियाना शहर में आर्मी में भर्ती होने के लिए आता है। उसका भाई उसे कहता है कि शहर में लुधियाना में हमारा एक रिलेटिव रहता है, आप रात को उनके घर रुक जाना। तो उस भाई का एड्रेस, उस रिश्तेदार का एड्रेस लेके वो नौजवान लुधियाना शहर में आ जाता है। 6 बजे वो अपने रिश्तेदार के घर में पहुंच जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति के घर को अपने रिश्तेदार का घर समझकर वहां बैल बजा देता है। बैल बजते ही एक महिला बाहर आती है, वो नौजवान पूछता है कि ये फलाना व्यक्ति का घर है? वो महिला कहती है हाँ हाँ ये उनका ही घर है, आप अंदर आइए, आपका तो इंतजार हो रहा था। संयोग बस उस महिला के पति का नाम भी उसके रिश्तेदार के नाम जैसा ही था। और उस नौजवान ने अपने रिश्तेदार को तो देखा था लेकिन उसकी बीवी और बच्चों से कभी मिलना नहीं हुआ, उनसे परिचित नहीं था, इसलिए वो बड़ा निश्चिंत होके अंदर चला जाता है और ये सोच के कि मैं तो राइट जगह पहुंच गया हूं। तो उस महिला का पति उस महिला को कह गया था कि मैं आज बाहर जा रहा हूं और मेरा एक बड़ा जिगरी दोस्त आने वाला है, उसकी तुम अच्छी तरह से खातरी करना। तो महिला उसको गर्मा गर्म दूध लाती है, ताजा ताजे जलेबी बना के खिलाती है और वो खाए जा रहा है कि मैं तो अपने संबंधी के घर में पहुंचा हुआ हूं। अच्छा, रात के 8 बजते हैं, वो महिला कहती है कि वो कह गए हैं कि मैं थोड़ा लेट होऊंगा तो आप खाना भी खा लीजिए। वो व्यक्ति खाना भी खा लेता है नौजवान। रात के 10 बजते हैं, अचानक बेल बजती है। नौजवान ने सोचा मेरा रिश्तेदार शायद आ गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो वहां कोई और ही व्यक्ति खड़ा है जो उस महिला का पति था लेकिन उसका रिश्तेदार नहीं था। नौजवान घबरा गया, वो कहता है सॉरी मैं किसी के गलत घर में आ गया हूं, ये मेरे रिश्तेदार का घर नहीं है, ऐसा ऐसी मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, और मैंने तो आपका खाना भी खा लिया, जलेबी भी खा ली, मुझे माफ कर दो। लेकिन उस महिला के पति ने इतने प्यार और अधिकार से ऐसे शब्द वहां उच्चारित किए कि उस नौजवान को लगा कि शायद अपनों से भी इतना अपनापन आज तक नहीं मिला हो। महिला के पति ने कहा, क्या आप हमारे परिवार के नहीं हैं? क्या आप हमारे कुछ नहीं लगते? क्या आप हमारे अपने नहीं हैं? ये सुनकर उस व्यक्ति का हृदय प्यार से भर आया और उसे लगा ऐसा प्यार तो आज तक शायद अपनों ने भी नहीं किया होगा। ये है सच्चा प्यार, ऐसा प्यार जो पत्थर दिलों को भी पिघला दे, निस्वार्थ प्यार। और प्यार ही हर चीज का बेस है। इंसान तो क्या, प्रकृति में भी प्यार है। आप किसी पेड़ को प्यार से सींचिए, ज्यादा जल्दी उसकी ग्रोथ होगी। आप पशु पक्षियों को भी प्यार चाहिए, लेकिन अगर हमें खुद ही प्यार के लाले पड़े होंगे तो हम दूसरे को प्यार क्या देंगे? एक भिखारी दूसरे भिखारी को भला क्या देगा? हम आज प्यार के भिखारी बन गए हैं, मंगता बन गए हैं, प्यार के दाता नहीं रहे। हमें प्यार देना है, सबको प्यार देना है। प्यार में इतनी ताकत है कि पावर ऑफ लव, एक तोता भी मनुष्य की बोली बोलना सीख जाता है। मां का स्पर्श पाते ही रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है। सर्कस में शेर जैसे भयानक जानवर भी काम करने लग जाते हैं। ये प्यार की जादू की ताकत है। प्यार से हम किसी को भी अपना सहयोगी बना सकते हैं, उससे कोई भी अपना कार्य करा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं। जब एक डॉक्टर अपने मरीज के साथ प्यार से व्यवहार करता है, प्यार से उसका हालचाल पूछता है, उसकी आधी पीड़ा स्वतः खत्म हो जाती है। एक ऑफिसर अपने एम्प्लॉई से प्यार से बात करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी 50% राइज कर जाती है। तो प्यार में इतनी ताकत है, और जो लोग प्यारे हैं, प्यार बांटते हैं, सदा लाइमलाइट में रहते हैं, सदा सबके नजरों में रहते हैं, सब लोग उन्हें चाहते हैं। प्यार लेने का आधार है प्यार देना। प्यार देते चले, प्यार देंगे प्यार मिलेगा। हमें देवताओं की तरह प्यार के दाता बनना है। देवताओं के चेहरे से प्यार की फीलिंग आती है, उनके नैनों से प्यार झलकता है, उनकी हाथों की मुद्राएं प्यार प्रदर्शित करती हैं। हमें भी देवताओं की तरह प्यार के दाता बनना है। जो भी हमें मिले उससे प्यार से बात करनी है, प्यार से बात सुननी है, प्यार से जीवन में व्यवहार करना है, तभी हम भी तो देवता बन पाएंगे। हमारा प्यार गंगा की तरह हो, गंगा की तरह भरपूर गंगा प्यार की हमें बनना है, निर्मल गंगा बनना है, पवित्र गंगा बनना है। हमारे प्यार में स्वार्थ ना हो, हमारा प्यार विशुद्ध हो, निर्मल हो, प्यार में आत्मिक भाव हो, शुभ भावना शुभ कामना हो, उसे गंगा की तरह प्यार कहेंगे। ऐसा ना लोग कहें कि जब इनके मतलब पड़ता है तो प्यार दिखाते हैं, जब मतलब नहीं पड़ता तो अहंकार में चूर रहते हैं। हमारा प्यार ऐसा नहीं हो, हमारा प्यार हमें सबको ऐसा देना है कि बराबर, बिना किसी पक्षपात के प्यार देना है। छोटों को भी प्यार देना है, बड़ों को भी प्यार देना है, समान वालों को भी प्यार देना है। छोटों से प्यार की निशानी है उनकी गलतियों को माफ करना, बड़ों से प्यार की निशानी है उन्हें इज्जत देना, समान वालों से प्यार की निशानी है उनके साथ सहयोग करना, आपसी समझ विकसित करना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर जीवन में है तो वो है लव। किसी भी रिलेशन में पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यार है। भाई भाई का प्यार आज बंट रहा है, पैसे के खातिर लोग भाई भाई का दुश्मन है, लेकिन प्यार पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। प्यार पैसे से बड़ी चीज है, इसलिए इसके लिए कोई कंप्रोमाइज हम ना करें और सच्चा प्यार विकसित करें, ट्रू लव। आज प्यार संसार में रहा कहां? प्यार शब्द इस्तेमाल तो होता है, लेकिन सच्चा प्यार ना होने के कारण एक आदमी के दूसरे आदमी के बीच में गैप पड़ता जा रहा है। स्वार्थ एक दीवार की तरह आदमी और आदमी को दूर करता जा रहा है। परिवार में, संस्थाओं में, कारोबार में कुछ ही समय के बाद प्यार बंटने लग जाता है और हर व्यक्ति अपनी डफली अपना राग अलापने लग जाता है। तो प्यार आज ऐसा हो गया है, स्वार्थ वाला प्यार, प्यार सच्चे प्यार को भूलकर इंसान ने हिंसा को, बाहुबल को अपना साधन बना लिया है। वो समझता है मैं बाहुबल से किसी को भी जीत सकता हूं। हम बाहुबल से दूसरे के पैसे तो छीन सकते हैं, लेकिन याद रखिए, दूसरों के दिलों को नहीं जीत सकते। दूसरों के दिलों को जीतना है तो एक ही तरीका है, सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह, जिससे हम दूसरों के दिलों के ऊपर राज कर सकते हैं। वी राइज इन ट्रू लव एंड फॉल इन फॉल्स लव। हम क्या कहते हैं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, बड़ी स्मार्ट लैंग्वेज है, खुद ही अपना बयान करती है। वी फॉल इन लव, कोई ये नहीं कहता वी राइज इन लव। इसका मतलब जो लव है, उनका जो लव है, जो वो समझे हैं, वो लव उनको गिरा रहा है। फॉल का मतलब गिरना है, होना चाहिए था राइज। सच्चे प्यार का मतलब है जहां किसी के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो, केवल दूसरों का भला समाया हो। और जहां प्यार है वहां हम दूसरों की कमियां कमजोरियां भी नहीं दिखाई देती। किसी को समझाना हो वो भी बड़े युक्ति से समझा देंगे, डायरेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि प्यार है। प्यार में आपसी समझ विकसित हो जाती है। मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड इन टुडेज डिक्शनरी इज लव। लव इज मोस्ट मिसयूज्ड, मिसइंटरप्रेटेड एंड परवर्टेड। सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी शब्द का हुआ है तो वो प्यार का हुआ है। लोग कहते हैं हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन लव की जगह लोगों ने लस्ट को प्यार समझ लिया है, लव की जगह अटैचमेंट मोह को प्यार समझ लिया है, और सच्चे प्यार से जो सच्चा प्यार था उससे लोग आज हट गए हैं। प्यार में स्वार्थ आ गया है, प्यार व्यापार प्यार आज बन गया है, और जहां व्यापार में जब प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं होती तो तकरार हो जाता है। आज का प्यार ऐसा प्यार रह गया है। कहते हैं इट्स नाइस टू बी इंपॉर्टेंट बट इट इज सो मच मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। नाइस बनना बहुत जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है, इम्पॉर्टेंट बनना बहुत जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम नाइस बने। और नाइस बनने का तरीका है अपनी पर्सनैलिटी को लविंग पर्सनैलिटी बनाना। टिट फॉर टैट इज नॉट ट्रू लव, अदले का बदला ये कोई सच्चा प्यार नहीं है। अगर प्यार ये है किल अदर्स बाय योर काइंडनेस, आज लोग हेटर्ड का जवाब हेटर्ड से देते हैं, हेटर्ड का जवाब देना चाहिए प्यार से। लोग क्या करते हैं, टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई, आपके कोई दांत तोड़ता है आप भी उसके दांत तोड़ दीजिए, कोई आपको आंख दिखाता है आप भी आंख दिखा दीजिए, कोई ईंट मारता है आप पत्थर मारिए, ये लोगों की नीति है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान की नीति है अगर आपको कोई नुकसान भी पहुंचा रहा है, किल अदर्स बाय योर काइंडनेस, आप उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कीजिए कि उसे खुद रियलाइज हो कि मैंने इसके साथ कितना गलत किया और इसने मेरे साथ कितनी दयालु वृत्ति रखी, कितना मेरा फिर भी भला सोचा। वो व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ये भावना लेकर हम चले। अपमान जो हमें करता है उसको भी हम अपमान ना समझ के अपमान ना समझे, ग्लानी करने वाले को गले लगाना, निंदा करने वाले को दोस्त समझना, ये सच्चा प्यार है। ऐसा प्यार आज विकसित करने की जरूरत है। दूसरों से तो सब प्यार करना जरूरी ही है लेकिन क्या हम अपने से भी प्यार करते हैं? जो अपने से प्यार करता है हमने कहा उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम, स्वमान। अपने आप को रोज रिवार्ड दो, अपने आप को हीन भावना ना लाओ। कल कह रहे थे हीन भावना कहीं समझते हैं, अपने आप को प्यार करो। मैं भी भगवान की संतान हूं, मैं भी यूनिक पर्सनैलिटी वाला हूं, आई एम ऑल्सो हैंडसम, आई एम ऑल्सो ब्यूटीफुल, मेरे भगवान की संतान, जो गुण भगवान में वो गुण मेरे में भी हैं। इसलिए रोज अपनी पीठ हमें थपथपानी चाहिए कि मेरे जैसा कोई नहीं। ये हम अगर समझें और दूसरों के साथ कभी कंपेयर ना करें। हीन भावना तब आती है जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, मेरे पास तो मारुति कार है, दूसरे वाले के पास दो और बढ़िया लंबी वाली कार आ गई, कंपेयर किया खुशी गायब। कंपेयर तुलना ना करें। अचानक एक दिन खुद जो हमने गौर से देखा उसी दिन से कोई अपने सिवा अच्छा नहीं लगता। आप देखिए तो सही अपने आप को, आप बहुत अच्छे हैं। अपने को देखोगे आपको अपने से अच्छा कोई और लगेगा ही नहीं। और कंपेयर ना करें, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, इफ यू कंपेयर यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ, ये आप अपनी इंसल्ट कर रहे हो। क्यों? मैंने गम को देखकर अपने खुदा से पूछा, ए खुदा तूने मेरे लिए गम ही क्यों बनाया, ए खुदा तूने मेरे लिए गम ही क्यों बनाया। मगर जब खुदा ने मुझे दूसरों का गम दिखाया तो मुझे अपना कम गम बहुत कम नजर आया। हम लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छे हैं, हम उनको देखें जो हमसे नीचे हैं, हम उनको देखते हैं जिनके पास हमसे ऊपर हैं। चाहे वो बाहर से ऊपर हैं, हो सकता है अंदर से और ही बैकवर्ड हो, अंदर से और ही परेशान हो, अंदर से और ही छोटे दिल वाले हो। हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं क्योंकि भगवान की संतान हैं। अपने से प्यार करना, साथ साथ सारे संसार से प्यार करना, यूनिवर्सल लिव। माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अपने हैं, अपनों को तो सभी प्यार करते हैं। जरूरत है सभी को अपना समझकर स्नेह देना। जितनी भी दुनिया में ग्रेट पर्सनैलिटीज हुई हैं, उन्होंने क्या एक से प्यार किया या सबसे प्यार किया? प्यार किया था स्वामी विवेकानंद ने, जो भारत के अध्यात्म का परचम सारी दुनिया में लहरा दिया। प्यार किया था महात्मा गांधी ने, जो सत्य और अहिंसा के बल पर 35 करोड़ भारतवासियों को आजादी दिला दी। प्यार किया था गुरु नानक और अन्य उत्तराधिकारी गुरुओं ने, जिन्होंने भयभीत जनता के बीच में साहस और वीरता का कमल खिला दिया। प्यार किया था महात्मा बुद्ध ने, जिन्होंने दया और करुणा से लाखों निर्दोष लोगों के बहते खून को रुकवा दिया। प्यार किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिन्होंने मोह और आसक्तियों में फंसे इंसान को शांति का रास्ता बता दिया। प्यार किया था पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने, जिन्होंने कलयुगी सृष्टि को सतयुगी स्वर्ग सृष्टि बनाने के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी, जिसमें आप सब यहां बैठे हैं। कितने ही प्रेमियों के प्रेम का वर्णन हम करें, हरेक के प्यार में उस परमात्मा का प्यार झलकता है। इन सब ने केवल एक स्त्री या एक पुरुष या एक व्यक्ति से प्यार नहीं किया था, इन सब ने प्यार किया मानवता से। हमें भी ऐसे ही सबके साथ प्यार करना है। बन सब बेसहारा बेसहारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी सके तो जी हजारों के लिए। अब आपको लास्ट में एक मैथ भी पढ़ा देते हैं। मैथ भी आपने पढ़ा ही होगा, ज्यादा टफ मैथ नहीं है, इजी है। मैथ का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, मैथ मैथमेटिक्स, यहां बिल्कुल इजी है। एबीसीडी आपने सबने पढ़ी है। अगर ए को हम एक नंबर दें, बी को दो दें, सी को तीन दें, तो कोई बता सकता है जेड को कितना नंबर होगा? 26, वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, जेड को 26 दे दिया। अब लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क। हार्ड, एच का स्थान आठवां है इसलिए इसको एट नंबर दिए, ए का स्थान वन है, वन नंबर दिया। इनके सभी लेटर्स को टोटल किया, कितना बना? 98%, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नॉलेज, नॉलेज के लेटर्स को ऐड करें, सम टोटल विल बी 96%। एटीट्यूड, एटीट्यूड मैंने कहा बहुत बड़ी चीज है, आपको 100% तक पहुंचा सकती है। उससे आगे है लव ऑफ गॉड, इनके लेटर्स का सम टोटल करें, आपको मिलेगा 101%। ये परमात्मा का प्यार है जो आपको सबसे ऊपर रखता है, और परमात्मा के प्यार में हर कार्य आसान हो जाता है। परमात्मा शिव का प्यार है क्या? उनका जो प्यार है वो एवर लास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होता, रिलायबल है, फेथफुल है, अनकंडीशनल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ट्रस्ट वर्दी है। तो ऐसा प्यार हम भी अपने जीवन में लाएं। उस परमात्मा प्यार के सागर, परमात्मा शिव ने हमें सिखाया है कि हमें इस संसार में प्यार स्वरूप बनकर रहना है। जो भी आए उससे प्यार से बात करनी है, प्यार से मिलना है, प्यार से बात सुननी है, सबसे दुनिया में प्यार से रहना है, और ये दुनिया बहुत जल्दी ऐसा स्थान बन जाएगा जहां इंसान तो क्या, पशु पक्षियों में भी, शेर और गाय में भी प्यार होगा। ऐसा दुनिया हम बहुत जल्दी आप सबके सहयोग से बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।